बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहां पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है।
इसी प्रकार से स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाएं जो किसी के विचारों की सीमाओं के भीतर से उत्पन्न होती है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होती, तो भी वो लगातार अपने ही बातों पर जोर देते हैं, यह सोचते हुए कि यह अच्छा है और यह उचित है। विवेक भलाई को मापने का अंतिम मानक नहीं हो सकता। आपने कुछ कार्य किया यह सोचते हुए कि वह उचित है, लेकिन कुछ मामलों में इस तरह के कार्य परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं होते। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा स्वभाव वो एक सिद्धांतिक विशेषता है हृदय की। मनुष्य स्वभाव से उत्पन्न होता है जो भलाई और बुराई का मिश्रण होता है। वो इसीलिए क्योंकि तमाम मनुष्य आदम के वंशज हैं और हमने मूल पाप को अपने स्वभाव में प्राप्त किया है। हालांकि हमारा स्वभाव वो सिर्फ उसी से नहीं बनता जो हमने विरासत में प्राप्त किया हो, यहां तक कि हम तुलनात्मक तौर पर बुरे स्वभाव से पैदा हुए हो, हम भले बन सकते हैं अगर हम लगातार भली चीजों को अपने हृदय में ग्रहण करते जाएं। लेकिन यद्यपि हम तुलनात्मक तौर पर भली हृदय के स्वभाव से उत्पन्न हुए हो, हम बुरे बन सकते हैं अगर हम अपने हृदय में बुराई को ग्रहण करते जाएं। चाहे आपकी संतान भले हृदय के बच्चे क्यों ना हो, यदि आप हर वक्त उन्हें झूठ बोलना सिखाएं तो वो बड़े होकर झूठ बोलने वाले बन जाएंगे। यदि वो कुछ चुराएं और अगर आप उन्हें वैसे ही छोड़ दें तो फिर वे चोर बन जाएंगे। क्या माता पिता अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं? हाँ, आप ऐसा करते हैं, आप अक्सर उन्हें झूठ बोलना सिखाते हैं। क्या कोई ऐसा है जिसने कभी भी अपने संतान को झूठ बोलना नहीं सिखाया हो? अपना हाथ उठाइए। प्रेयर सेंटर के प्रेसिडेंट आप वहां पर हैं, कुछ ही ऐसे हैं। क्यों आप अपनी संतान को झूठ बोलना सिखाते हैं? आप उन्हें झूठ बोलना सिखाते हैं, इसलिए वो झूठे बन जाते हैं। आजकल के दिनों में, हालांकि वैसा ही नहीं होता, लेकिन मेरे स्कूल के दिनों में छुट्टियों से पहले हमें रिपोर्ट कार्ड मिलते थे और माता पिता अपने बच्चों को उन्हें दिखाने को कहते थे और फिर वो झूठ बोलते थे कि उनके अध्यापक उन्हें छुट्टियों के बाद देंगे। और एक विद्यार्थी अपने रिपोर्ट कार्ड को सही करता था और फिर अपने माता पिता को दिखाता था। क्या आपको अभी भी समझ नहीं आया? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। फोन बज रहा है और बेटी फोन को उठाती है और फिर वो रिसीवर को छुपा करके आपको कहती है कि मम्मी, कोई आपको फोन कर रहा है, क्या चाहती है कि आप मैं उसे बोलूं? और फिर आप उसे कहती हैं, उसे कहो कि मम्मी घर पर नहीं है, वो बाजार गई है। देखिए, आप अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं और वो इसे सीखते हैं। आप अपने बच्चों के साथ अपने घर पर है, लेकिन आप उनसे झूठ बुलवाते हैं जैसे मानो आप घर पर हो ही नहीं। इस प्रकार से असत्य उनके अंदर आता है और भला हृदय बुरे हृदय में बदल सकता है। हमारे स्वभाव की बुराई वो ऐसे स्थान पर रहती है जो हमारे विवेक से भी कहीं ज्यादा गहरे स्थान पर रहती है, इसीलिए उसे ढूंढना और भी अधिक मुश्किल होता है। हमारे स्वभाव की तुलना भूमि की विशेषता से की जा सकती है। यदि आप भूमि से खरपतवार हटाएं, पत्थर हटाएं और फिर उसमें बीज बोएं, तो अभी आप उसे देखने के द्वारा ये कह नहीं सकते कि वह भूमि अच्छी है या नहीं है। सिर्फ देखने के द्वारा आप नहीं कह सकते। इसी प्रकार से यदि आप स्पष्ट दिखने वाले असत्य को निकाल फेंके और अपने विवेक से बुराई को निकाल फेंके, तो भी आप वास्तविकता में किसी प्रकार की बुराई को देख नहीं पाएंगे जो आपके अंदर बची रह जाएगी और वो आसानी से प्रकट नहीं होती हैं। परंतु क्योंकि आपके पास स्वभाव में इस तरह की बुराई है, इसीलिए आपके पास शारीरिक विचार होते हैं उसका एहसास किए बगैर। हम इसे समझ सकते हैं यदि हम अय्यूब की बुराई को दूर करने की प्रक्रिया को देखें। परमेश्वर ने शैतान से बात की अय्यूब को ऊंचा उठाते हुए। उसने कहा कि अय्यूब दोष रहित था और धर्मी था और उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी और उसके समान कोई नहीं था। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा था, अय्यूब ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था उसके दिनों में कि कुछ भी उसने परमेश्वर के विरोध में किया हो, परंतु तो भी अय्यूब के पास शारीरिक विचार थे। उदाहरण के लिए, जब उसके बच्चे कोई उत्सव करते थे तो वह चिंतित हो जाता था कि कहीं उसके बच्चों ने कोई पाप ना किया हो, इसलिए वह अपने तमाम बच्चों को बुलाकर बलिदान अर्पण करता था। और बाइबल कहती है कि अय्यूब ने ऐसा लगातार किया। उसके सारे के सारे काम उचित थे, धर्मी थे। वो हर प्रकार के पाप की दीवार से बचते हुए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखा करता था हर वक्त। इसलिए अय्यूब चाहता था कि उसके बच्चे भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें। परंतु यदि आप उसके कामों के दूसरे पहलू पर दृष्टि करें तो आप देख सकते हैं कि वह परमेश्वर से डरता था। वो डरता था कि परमेश्वर पापियों को सजा देता है। बाइबल में लिखा है कि प्रेम में भय नहीं होता, लेकिन यह बात कि परमेश्वर की सजा से अय्यूब डरता था, इसका मतलब यह है कि उसने सिद्ध प्रेम अपने हृदय में नहीं जोता था। अय्यूब के अंदर परमेश्वर के बारे में गलत फहमी थी। परमेश्वर ने अय्यूब के विरोध में दोष को ग्रहण किया और बहुत सी परीक्षाएं अय्यूब के ऊपर आई। अय्यूब ने अपने तमाम बच्चों को खो दिया, संपत्ति को खो दिया और अंत में उसके पूरे शरीर में दर्दनाक फोड़े हो गए। और जब उसकी पत्नी ने यह देखा तो उसने कहा कि क्या तू अभी भी अपने ही मान पर बना रहेगा, परमेश्वर को श्रापित कर और मर जा। अय्यूब को अपनी पत्नी से तसल्ली मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसके बदले उसने उसका तिरस्कार किया। लेकिन तो भी उसने अपने होठों से पाप नहीं किया। लेकिन जब हम उसकी बातें सुनते तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के बारे में उसके अंदर गलत फहमी थी। वो पूरी तरह से परमेश्वर को गलत समझता था। अय्यूब 2:10 में लिखा है, तो एक मूढ़ स्त्री कैसी बातें करती हैं, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें। वो परमेश्वर से डरता था क्योंकि उसने परमेश्वर को गलत समझा। परमेश्वर ने उसे आशीषें दी, उसने इस पर विश्वास किया, लेकिन उसने यह भी विश्वास किया कि परमेश्वर उस पर दुख भी देगा, इसलिए उसे कितना भयानक महसूस हुआ होगा। क्या यह सत्य के अनुसार उचित है? नहीं। नीति वचन 10:22 कहता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्यारे भाई और बहनों, अमीर बनना परमेश्वर की आशीष है। व्यवस्था विवरण 28 में जो अमीर बनने के रहस्य है वो वहाँ प्रकट है। एल्डर्स पुरुष सदस्य, आप व्यवस्था विवरण 28 पढ़िए। बाइबल के हर हिस्से में अमीर बनने के ऐसे बहुत से भेद है। धन्य हो तुम जब अंदर आते हो, बाहर जाते हो, आप बहुतों को उधार दोगे लेकिन किसी से भी नहीं लोगे, आप सिर बनोगे। आशीष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अमीर बनने की ये बाइबल में लिखा है और अगर आप पालन करें तो आशीष आपकी हो जाएगी। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर आपको दोनों ही नहीं देगा एक ही बार में, आशीषें भी और दुख भी। क्यों? क्योंकि अगर आप दुखी होगे तो आप खुश नहीं हो सकते। चाहे आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, आप खुश नहीं हो सकते अगर आप चिंता में हो। बजाय इसके गरीब रहना बिना चिंता और दुख के, वो खुशी की बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि आपको गरीब रहना है। अगर आप अमीर बनेंगे और अगर आपके पास कोई दुख नहीं होगा तो यह कितनी महान बात है, वो सच्ची आशीष है। ये प्रभु की आशीष है जो धन देता है और उसमें कोई दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर उन्हें आशीष देता है जो उन्हें प्राप्त करने के योग्य है, लेकिन वो उनके ऊपर दुख और विपताएं नहीं डालता। वो अपने बच्चों को केवल भली वस्तुएं देता है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपका डर दूर हो जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे। इसलिए डरने का कोई कारण नहीं होगा। परमेश्वर केवल आपको भली बातें देता है। आप डरते हैं क्योंकि आप वचनानुसार नहीं जीते, क्योंकि आप पाप करते हैं, इसलिए डरते हैं। इसलिए आपको बोझ लगता है, इसलिए आपको मेरे सामने आने से डर लगता है। एक बार आप मेरे पीछे बड़े जोश के साथ चलते थे, लेकिन अब आप मुझे अनदेखा करते हैं। इसका मतलब आप मुझसे डरते हैं। मुझसे डरने का कोई कारण नहीं है। हालांकि अगर आपने बिना किसी डर के पाप किया है, और फिर आप अगर ये कहें कि सीनियर पास्टर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शत्रु दुष्ट और शैतान है जो आपदाएं डालता है। वो दुख जो अय्यूब के ऊपर आए, वो सब शैतान के द्वारा लाए गए थे। मान लीजिए एक कार्यकर्ता के पास उसी प्रकार के शारीरिक विचार है जैसे अय्यूब के पास थे, और वह किसी को परामर्श दे रहा है, तो फिर वह परमेश्वर को ऐसे दर्शा सकता है जैसे वह डरावना परमेश्वर है, और इस तरह से वह उस व्यक्ति को परमेश्वर से और भी दूर कर सकता है। इसलिए अब हमें हमारे स्वभाव में बुराई कैसे हम ढूंढ सकते हैं? हम इन्हें आजमाइशों से ढूंढ सकते हैं। अय्यूब ने अपने स्वभाव में बुराई को उन गंभीर परीक्षाओं से एहसास किया। हालांकि अगर वह अपने स्वभाव की बुराई को एहसास कर पाता, तो वह उसी वक्त उसे दूर कर सकता था, लेकिन क्योंकि वह उसे एहसास नहीं कर पाया, इसलिए वह दूर भी नहीं कर पाया, इसलिए उसके ऊपर आजमाइशें आई। ये कितना अच्छा होता अगर आप बुराई को बिना आजमाइशों से गुजरे हुए दूर करें। वो अपने स्वभाव की बुराई को दूर कर पाया और परमेश्वर से आजमाइशों के द्वारा सच्चा मेल रख पाया। लेकिन हमें अपने स्वभाव की बुराई का एहसास करने के लिए इस तरह की गंभीर आजमाइशों से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें एहसास कर सकते हैं अगर हम निरंतर अपने आप को परमेश्वर के वचन पर रख कर देखें। इब्रानियों 4:12 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है, और इससे भी बढ़कर पवित्रता का सुसमाचार जिसे आप सुन रहे हैं, वो एक बहुत ही अच्छी तेज तलवार के समान है। यह स्वभाव में छोटी छोटी बुराई को भी छेद सकती है। और साथ ही 1 तिमोथियों 4:5 कहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। आप कैसे पवित्र हो सकते हैं? परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा। केवल वचन के द्वारा पवित्र नहीं हो सकते, आपको प्रार्थना की भी आवश्यकता है। केवल प्रार्थना के द्वारा आप पवित्र नहीं हो सकते, आपको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, दोनों ही वचन और प्रार्थना के द्वारा आप पवित्र हो सकते हैं। सिर्फ जोशीली प्रार्थना के द्वारा क्या आप पवित्र बन जाएंगे? नहीं। आप नहीं जानते कि बुराई क्या है, पाप क्या है, तो फिर आप कैसे पवित्र हो सकते हैं बिना उसे जाने? इसलिए आपको वचन का भी पता होना चाहिए। आपको वचन को सुनना है, उसे सीखना है। लेकिन अगर आप प्रार्थना ना करें तो आप ताकत नहीं प्राप्त कर सकते उसे दूर करने की। जब आप प्रार्थना करते हैं तो ताकत आपके ऊपर आएगी, और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा और अपनी इच्छा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप उसे निकाल फेंक सकते हैं। इसीलिए आप पवित्र हो सकते हैं वचन और प्रार्थना के द्वारा। हमें एहसास करना है अपनी बुराई को परमेश्वर के वचन की ज्योति में और प्रार्थना के द्वारा, और उसे निकाल फेंकना है। क्या आप में से कोई ऐसा महसूस करता है कि आपने कोई विशेष इतना अधिक पाप तो नहीं किया, और उसी वक्त आपके अंदर शांति भी नहीं है? आपके स्वभाव की बुराई वो समस्या हो सकती है, या फिर इस तरह के कारण हो सकते हैं। आपने सोचा कि आपने अपने पापों का पश्चाताप किया पहले, लेकिन वास्तविकता में आपने पूरी तरह से क्षमा नहीं पाई। दूसरे शब्दों में, जब आपने पश्चाताप किया था, पाप की दीवार वो पूरी तरह से नाश होनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपका पश्चाताप एक सिद्ध पश्चाताप के रूप में ग्रहण नहीं किया गया, तो आपका हृदय पवित्र आत्मा से भरा नहीं रहेगा, आनंद से नहीं भरा रहेगा। यद्यपि आप जोशीली प्रार्थनाओं से क्षण भर के लिए भर सकते हैं, लेकिन जल्दी ही वह गायब हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पाप की दीवार है। ठीक है, यदि आपके अंदर सच्ची शांति नहीं है हृदय में, इसका मतलब यह है कि अभी आपके पास शारीरिक विचार है। जब आपके पास शारीरिक विचार होते हैं, आप में शांति नहीं होती। आपके पास तब शांति होती है जब कोई शारीरिक विचार नहीं होता। शारीरिक विचारों के द्वारा आप शांति में नहीं रह सकते। जब आप दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं, ईर्ष्या और जलन महसूस करते हैं, क्या उस वक्त आपको शांति होती है? यदि आपके पास हृदय में सच्ची शांति नहीं, इसका मतलब यह है कि आपके पास शारीरिक विचार है। मुझे आशा है कि आप अपने स्वभाव की बुराई को पवित्रात्मा की ज्योति में तेज प्रार्थनाओं के द्वारा, जोशीली प्रार्थनाओं के द्वारा दूर करेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आइए अब हम शारीरिक विचारों और आज्ञाकारिता के बीच के संबंध को देखें। हम पवित्रात्मा की आवाज और अगुवाई को तभी पालन कर सकते हैं जब हम अपने शारीरिक विचारों का नाश करते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम पवित्रात्मा की आवाज का पालन करें तो हमारे शारीरिक विचार जो हम में बचे हुए हैं वो नाश हो सकते हैं। जब हम पवित्रात्मा की आवाज का पालन करते हैं, हम परमेश्वर से मिल सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि कैसे वह मनुष्यों के विचारों से परे कार्य करता है। हम अलग अलग समस्याओं के समाधान पा सकते हैं और हमारे हृदय की इच्छाओं के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। हम परमेश्वर के राज्य को महानता से पूरा कर सकते हैं उसकी सामर्थ्य के द्वारा। शारीरिक विचार वो नाश हो जाएंगे इन अनुभवों के द्वारा। आज्ञाकारिता, जैसे कि आपको बताया गया, वो हमें दुगनी आशीषें देती है हमारे प्राण को समृद्ध होने में और हमारे साथ सब चीजों को भला होने में। और बाइबल भी हमें उन लोगों के बारे में बताती है जिन्होंने पवित्रात्मा की आवाज का पालन करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रभु के वचन के द्वारा आशीषें प्राप्त की। पत्रस इनमें से एक ऐसा व्यक्ति है। पत्रस के अंदर बहुत ही कड़ा अभिमान था, बहुत ही कड़े स्वयं की धार्मिकता और अभिमान का व्यक्ति था वो, ठीक है। लेकिन यीशु की आज्ञा पालन करने के प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप वो एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया जो अपने पूरे जीवन भर पालन कर पाया। उसने पवित्र आत्मा के कार्य प्रकट किए और सुसमाचार का प्रचार असंख्य आत्माओं को किया। आइए कुछ वो आशीषे मैं आपको बताऊंगा जो आशीषे पत्रस ने प्राप्त की जब वो अपने शारीरिक विचारों को तोड़ने की प्रक्रिया से गुजर रहा था, जब उसने पालन किया और अपने शारीरिक विचारों का नाश किया। उन अलग अलग शारीरिक विचारों के स्तर के आधार पर जो मैंने अब तक आपको बताए हैं, मुझे आशा है कि आप महान समझ को प्राप्त कर सके इनके द्वारा, और साथ ही मुझे आशा है कि आप महान आशा को प्राप्त कर सके कि आप भी बदल सकते हैं। पत्रस एक मछुआरा था, वो गलील की झील में मछलियां पकड़ता था जो इसराइल का सीमा का क्षेत्र था, और उस वक्त इसराइली विदेशी शासकों के अधीन था, और इस कारण से वो मसीहा चाहते थे जो उनकी स्थिति की वास्तविकता को बदल सके और उन्हें बचा सके। वो एक राजनीतिक मसीहा का इंतजार कर रहे थे जैसे कि राजा दाऊद, और पत्रस भी उन यहूदियों में से एक था। यहां तक कि यीशु से मिलने से पहले वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता का अनुसरण करता था जो मसीहा का प्रचार कर रहा था, और इसी बीच वो यीशु से मिला पहली बार अपने भाई अंद्रियास के द्वारा। हालांकि वो यीशु से मिला तो भी उसने यह निर्णय नहीं लिया कि वो सब कुछ सब बातों को पीछे छोड़ देगा अपने जीवन में और एक चेले का जीवन जीना शुरू कर लेगा। लेकिन एक दिन कुछ अद्भुत उसके जीवन में हुआ जिसने उसके पूरे जीवन को बदल डाला। लुका 5 अध्याय में पत्रस हमेशा की तरह गलीली की झील में मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन उस विशेष दिन में वो कोई भी मछलियां नहीं पकड़ पाया। हालांकि पूरी रात भर उसने संघर्ष किया और वो अब समेटने पर था, लेकिन यीशु उसकी नाव में चढ़ा और परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, और उसने पत्रस को कहा कि गहरे में ले चल और वहां अपना जाल डाल। पत्रस एक विशेषज्ञ था और एक अनुभवी मछुआरा था, वो गलीली झील के बारे में सबसे बढ़कर जानता था। यदि उसके पास इस प्रकार के शारीरिक विचार होते कि मैंने तो पूरी रात भर काम किया लेकिन कुछ नहीं पकड़ा, और यीशु के पास तो कोई अनुभव नहीं है और ना ही उसके पास कोई ज्ञान है मछलियां पकड़ने का जो मेरे पास है, तो फिर वह यीशु की बातों का पालन नहीं कर पाता। लेकिन उसने अपने ज्ञान और अनुभव को छोड़ दिया, वरन अपने विचारों का द्वार खोल दिया। उसने यीशु की बातों का पालन किया और फिर वह बहुत सी मछलियां पकड़ पाया कि उसका जाल फटने लग गया। वो दो नाव जिसमें मछलियां पकड़ी गई वो डूबने लग गई। ये देखकर पत्रस यीशु के सामने घुटने टेकने लगा और कहने लगा कि प्रभु मेरे सामने से चला जा, मैं एक पापी मनुष्य हूं। और इस तरह से उसने पूरी तरह से अपना हृदय यीशु के सामने खोल दिया। उसने निर्णय लिया कि वो उसका चेला बनेगा सब कुछ को त्यागने के द्वारा। प्यारी भाइयों और बहनों, केवल एक बार नहीं वरन बार 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 पवित्र आत्मा की आवाज और अगुवाई की श्रृंखला को सुने और ऐसे बने जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सके। अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई पाएंगे तो आप सब बातों में संपन्न बन जाएंगे। हमारे सदस्य वो जो व्यापार करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई पाएं तो असंभव संभव बन जाएगा और संभव और भी बेहतर बन जाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकें तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको ये करना है या नहीं। क्या आपको घर बेचना है? कोई समस्या नहीं, आप आसान मार्ग को चुन सकते हैं। कृपया अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल कर मुश्किल रास्ता ना चुने। एक एल्डर है जो आत्मा में जाने के लिए समर्पित है और परिश्रम पूर्वक संदेशों को सुनते हैं। आपको अपने आप को तेजी से वचनों से भर लेना है, आत्मिक रीति से उन्हें समझना है और आत्मा में उन्हें जोत लेना है। जितना अधिक आप उन्हें अपने अंदर आत्मा में जोतेंगे, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई पाएंगे और फिर अपना व्यापार करें। वो चीजें जो नहीं हो सकती, पिता परमेश्वर उसे रोकेंगे या उसे कर देंगे अगर वो चाहते हैं। और वो चीजें जो की जा सकती है वो निश्चित तौर पर होगी, यद्यपि आप अपने मन में योजना बनाएं, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई ना करें। जैसे कि नीति वचन 16 अध्याय कहता है, यद्यपि आप अपने मन में युक्ति बनाएं, लेकिन आपको परमेश्वर की अगुवाई मिलनी चाहिए, अन्यथा वह अच्छे से नहीं होगा। जब तक आप परमेश्वर के जन ना बन जाएं, चीजें गलत हो सकती है। यद्यपि बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, वो इसीलिए क्योंकि आपके पास अपने शारीरिक विचार होंगे और आप दूसरे ही तरीके से अपने शारीरिक विचारों को अपने तरीके से इस्तेमाल करके करेंगे। यद्यपि पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई आशीषों के मार्ग की ओर करना चाहें, लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि आप किसी और ही मार्ग से जा रहे हैं अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करने के द्वारा। यदि आप वचन को परिश्रम पूर्वक सुने और वचन का अर्थ एहसास करें और वचन का पालन करें और आत्मा में जोतें, तो पवित्र आत्मा आपके हृदय की अगुवाई करेगा। यदि आप इस तरह से अपने व्यापार की योजना बनाएं तो यह महान होगा, ठीक है? ये सिद्ध होगा, बहुत अच्छा होगा। आइए संदेश पर सोचते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए। मदद कीजिए कि जो हमने आज सुना है हमें विश्वास और जीवन बने। हमें आशीष दीजिए कि हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा और अगुवाई प्राप्त कर सकें। जब हम अपने विवेक में बुराई को ढूंढे और अपने स्वभाव में बुराई को ढूंढे तो हम उसे निकाल फेंके, हम साफ रीति से पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त कर सकें। पिता परमेश्वर, कृपया हमारे लिए कार्य करें, हमारी मदद करें कि हम अपने विवेक और स्वभाव में बुराई को ढूंढें और उसे निकाल फेंकें। आपका धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम जीसीएन टीवी दर्शकों पर और मानमिन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं, सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग कोशिकाएं उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुखाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो, पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं, तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो, जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं, तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें, वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे, दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो, पिता कोई दाग वहना रह जाए, तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ, पिता मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की, पिता कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो, बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो, दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाए, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए, पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं, वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए, उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाए, कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा, विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए, उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी, अपने बच्चों को आशीष दीजिए और वो आपको सब बातों में महिमा दें, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें, वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।